بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, सितंबर की 17, सफर की 10 और शहरीवर माह की 26 तारीख। कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से ही करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम आप सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आपका मनपसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा, पत्र संसार। और सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, विज्ञान की डगर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों के बारे में अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान अब शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि फारस की खाड़ी में मौजूद अबू मूसा, तुम्बे कुचिक और तुम्बे बुजुर्ग द्वीप ईरान के ही हैं। बहुत से अफगानी कूटनयिक अब अपने देश न आकर विदेशों में शरण लेने के इच्छुक हैं। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। विदेश मंत्री ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता का व्यापक सहयोग की प्रक्रिया पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि दुशंबे में राष्ट्रपति की उपस्थिति में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य चुन लिया गया। उन्होंने कहा कि यह स्ट्रेटेजिक सदस्यता का ईरान की ओर से पड़ोसियों के साथ व्यापक सहयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई देशों के नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बनने पर ईरान को बधाई दी है। याद रहे कि शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में शुक्रवार 17 सितंबर 2021 को आधिकारिक रूप में ईरान को इसकी सदस्यता प्रदान कर दी गई। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भेंट में कहा है कि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में विस्तार के लिए मूल्यवान संभावनाएं मौजूद हैं। सैयद इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में एक दूसरे से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रपति रईसी ने दोनों देशों के मध्य मौजूद समानताओं की ओर संकेत किया और कहा कि किसी को भी इन अच्छे संबंधों को खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दोनों देशों की लंबी सीमाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक लेन देन के लिए संभावनाओं की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति होने से आर्थिक लेन देन और व्यापार को सक्रिय बनाने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों के विकास में मदद भी मिलेगी। इसी प्रकार इस भेंट में ईरानी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में व्यापक सरकार के गठन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अफगान समस्या के समाधान की कुंजी व्यापक सरकार का गठन और इस देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकना है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन में इस्लामी गणतंत्र ईरान और भारतीय विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। ताजिकिस्तान की राजधानी में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक अहम भेंटवार्ता हुई। गौरतलब है कि ईरानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब्दुल्लाहियान ने अपने भारत दौरे को फिलहाल टाल दिया था क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से उनकी मुलाकात दुशंबे में होना तय हो गई थी। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शंघाई शिखर सम्मेलन के बाद भारत का दौरा करेंगे। क्षेत्र की हालिया स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई इस भेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फार्स की खाड़ी की सहकारिता परिषद के बयान पर ईरान की ओर से ये कहा गया है कि अबू मूसा, तुम्बे कुचिक और तुम्बे बुजुर्ग तीनों ही द्वीप निश्चित रूप से ईरान से संबंधित हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खतीब जादे ने कहा है कि हमारे तीनों द्वीपों के बारे में घिसे पिटे बयान देने से ईरान की नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ये प्रतिक्रिया फार्स की खाड़ी की सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के बयान पर सामने आई है। सईद खतीब जादे का कहना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान किसी भी स्थिति में अपने शांतिपूर्ण परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम में हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश की 13वीं सरकार सभी पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की पक्षधर है। खतीबजादे के अनुसार फारस की खाड़ी की सहयोग परिषद के कुछ ही देश हैं जो क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप की ओर कोई भी ध्यान दिए बिना अपने ईरान विरोधी विचार थोपना चाहते हैं। रूस ने अमेरिका को ये याद दिलाया है कि वो परमाणु समझौते से अगर बाहर हो गया है, इसलिए उसे पहले ईरान के खिलाफ प्रतिबंध हटाने होंगे ताकि ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता सामान्य हो सके। रूस के विदेश उपमंत्री रियाबकोफ ने एशिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से परमाणु समझौते से बाहर निकल आया, इसलिए उसे चाहिए कि वो ईरान की ओर पहला कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय समझौते में वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले अमरीका को महत्वपूर्ण ये है कि वो ईरान पर से हथियार सहित सभी प्रतिबंधों को हटाए। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा कि JCPOA को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से वियना वार्ता की कार्रवाई में जो देर हुई है उसका कारण ईरान में चुनाव और नई सरकार का गठन है। याद रहे कि 14 जुलाई सन 2015 को सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य देशों और जर्मनी के साथ ईरान का परमाणु समझौता हुआ था और 16 जनवरी 2016 को इस समझौते का कार्यान्वयन शुरू हुआ था। बाद में सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके परमाणु समझौते को अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा दिया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर रॉकेटों से हमले किए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ये रॉकेट हमले काबुल के उत्तर में बिजली पैदा करने के खैर खाना क्षेत्र के निकट हुए। इन हमलों से जो क्षति हुई है उसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिली है। ज्ञात रहे कि जब से तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया है तब से कई बार काबुल पर रॉकेट के हमले हो चुके हैं। विश्व के विभिन्न देशों में तैनात अफगानिस्तान के कूटनयिक अब अपने देश वापस न आकर विदेशों में ही रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद इस देश के सैकड़ों राजनयिकों का जीवन अधर में पड़ा हुआ है। उनके पास दूतावास चलाने के लिए धन नहीं है। विदेशों में फंसे ये अफगान कूटनयिक अपने देश में अपने परिजनों की स्थिति को लेकर भी बहुत अधिक चिंतित हैं। जर्मनी, जापान और कनाडा सहित कई देशों में मौजूद अफगानी कूटनयिकों ने हालात को बहुत ही निराशाजनक और तकलीफदेह बताया है। उनका कहना है कि दूतावासों को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में अपने देश से दूर रहकर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इन अफगानी राजनयिकों में से अधिकांश वापस अफगानिस्तान जाना ही नहीं चाहते। उनकी इच्छा है कि उनको किसी देश में शरण मिल जाए। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के कई दूतावास इस समय निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इसी बीच तालिबान ने सभी दूतावासों में कामकाज जारी रखने का आदेश दिया है। तालिबान के विदेश मंत्री का कहना है कि दूतावास देश की संपत्ति हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस देश में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। वहां के अधिकांश लोग भुखमरी का शिकार है। लोगों के पास रोजगार और आय का कोई भी साधन बाकी नहीं बचा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान से अपने हाथ खींच लिए हैं। अब देखना यह है कि वहां पर आगे क्या होता है। शुक्रवार की सुबह तड़के यमनी सेना ने एक व्यापक सैन्य कार्रवाई करते हुए दक्षिणी सऊदी अरब में स्थित कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यमनी सेना ने सऊदी अरब के भीतर घुसकर एक व्यापक सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार दक्षिणी सऊदी अरब के जीजान और कई अन्य इलाकों से भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस व्यापक सैन्य कार्रवाई के बारे में यमनी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार की शाम को यमनी सेना की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में शुक्रवार की सुबह तड़के यमनी सेना द्वारा किए गए व्यापक जवाबी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के बाद की तस्वीरों और वीडियोस को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने गुरुवार की सुबह को एक इंटरव्यू में कहा है, क्षमा कीजिएगा, फ्रांस का कहना है कि अमेरिका से पनडुब्बी की डील हमारे लिए बुरी खबर है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने गुरुवार सुबह को एक इंटरव्यू में कहा है कि ये हमारी पीठ में छुरा घोंपने की तरह है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भरोसेमंद संबंध स्थापित किए थे और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए परमाणु पनडुब्बियों का अधिग्रहण को लेकर फ्रांस ने गहरी नाराजगी जताई है। फ्रांस ने कहा है कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित किए और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। विश्व के 6 देशों ने राष्ट्रसंघ के महासचिव से शिकायत की है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ के कानूनों का भी सम्मान नहीं करता। संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस्लामी गणतंत्र ईरान, रूस, सीरिया, क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ ने राष्ट्रसंघ के महासचिव को संयुक्त पत्र भेजकर अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के उल्लंघन की शिकायत की। गुटेरेस को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रसंघ के समारोहों और वहां से संबंधित कामों के लिए अमेरिका हमें समय पर वीजे नहीं देता, इसी कारण हम बहुत से कार्यक्रमों में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज के कार्यक्रम में हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में ईरानी प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद इस देश की जनता के बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाने और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार के कसीदे पढ़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सोमवार से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ईरान में बनने वाली सरकार के विदेश मंत्री एक प्रतिनिधि मंडल के साथ न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के मेहमान होंगे। महासभा के सम्मेलन में भाग लेने गए अमीर अब्दुल्लायान के इस दौरे के दौरान JCPOA, यमन और अफगानिस्तान के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट रविश सैदी की जबानी।
मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, सोमवार से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ईरानी प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेगा। इसका नेतृत्व ईरानी विदेश मंत्री 57 वर्षीय हुसैन अमीर अब्दुल्लायान करेंगे। अब तक 30 देशों के विदेश मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। UN में ईरान के राजदूत तख्त रवानची इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, महासभा के सम्मेलन के तर दूसरी बैठकें हैं, उच्च स्तरीय बैठकें जो ऊर्जा, भोजन, जातीय भेदभाव जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसी तरह सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में हम इन बैठकों में भी भाग लेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे और अफगानिस्तान का मुद्दा स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी तरह यमन का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों के साथ भी विशेष मुलाकात करेंगे। इसी तरह ईरानी विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया से बातचीत भी कार्यक्रम का हिस्सा है और दूसरी मुलाकातें भी जो अभी निर्धारित नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि परमाणु समझौता और अफगानिस्तान का मुद्दा,
सऊदी अरेबिया
और यमन के बारे में उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तेहरान के समय के मुताबिक मंगलवार की रात को यहां संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपति भाषण देंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के लिए कामरान नजफजादी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया और इसी के साथ अमेरिका की हार और तालिबान की जीत के खूब चर्चे भी हुए, लेकिन क्या किसी ने परवाह की कि इस बीच इस देश की जनता का क्या हुआ? देश जीत गया या हार गया? पेश है एक रिपोर्ट कायम रिजवी की ज़बानी।
यहाँ तक के लोग अपने घरों के दस्तरखान भी बेच रहे हैं। शहर की सड़कें पिछले कुछ दिनों से घर की जरूरत की चीजें बेचने का केंद्र बनकर रह गई हैं।
मर्दों ने बिछड़ी वो बेदर बदबख्ती बजान रसीदा।
लोग अपने घरों की चीजों को बेचने के लिए लगातार उनको यहाँ पर ला रहे हैं। कोई रोजगार न होने और पूर्व सरकार के कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की वजह से अफगानिस्तान के लोग इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। वे लोग अपने घरों के सामान को बेच रहे हैं ताकि उसके पैसे से वे अपना पेट भर सकें और अपने घर वालों को भी دو وقت کی روٹی کھلا سکیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو مکان مالک رونے لگا اور ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جہاں پر کچھ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ دیش چھوڑ کر بھاگ جانے کی چنتا میں ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ طالبان نے جو اعلان کیا تھا سرکار کے گٹھن میں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگوں کی چنتا بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبھی جو کچھ ہے اسے بیچ کر افغانستان سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی خالی ہاتھ ہے، اس لیے وہ جو کچھ ہے اسے بیچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھر کی بچی ہوئی چیزوں کو لا کر یہاں پر بیچنے میں لگے ہیں۔ یہاں پر ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، کچھ کم استعمال ہوئی اور کچھ زیادہ استعمال ہو چکی چیزیں۔ پچھلے دو دشکوں میں لگ بھگ 50 دیشوں کی افغانستان میں اپستھتی کے دوران یہ دیش پوری طرح سے اپبھوکتا، آیات کرتا اور ودیشی مدد پر نربھر ہو کر رہ گیا ہے۔ اب جبکہ امریکہ اور اس کے سہیوگی یہاں سے جا چکے ہیں، امریکہ نے افغانستان کی سمپتی کو سیز کر دیا ہے۔ آج کل وقت گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے لوگوں کی حالت ہر دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں وشو کھادیہ کارکرم نے یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں 90% لوگوں کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ کابل سے IRIB کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی نے ہمیشہ کی طرح اپنی سرکار کے کارناموں کے قصیدے پڑھے ہیں اور وگت کی سرکاروں کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپتے حسن۔
بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے پرشاسن کال میں سرکشا سے جتنے بھی معاملے جڑے ہیں ان کو وشیش پراتھمکتا دی گئی اور ان ایشوز کو سالو کرنے کا پریاس کیا گیا جو سرکشا ایجنسیوں کو تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی پرشاسنیں آئیں انہوں نے ان کے انوسار اس وشے پر زیادہ تر دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفینس کے معاملے میں ان کا پرشاسن کوئی بھی سمجھوتا یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سینا نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ وشو کے ساتھ ہر سطح پر مقابلے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں ہماری سرکشا بلوں کو ان چیلنجز کا سامنا ہے، لہذا انہوں نے اس حوالے سے جو رننیتی بنائی ہے وہ ایک اچھی رننیتی ہے اور اس کا لابھ بھرپور سرکشا بلوں کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے وپکشی دلوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وپکشی دلوں نے ان کی نیتیوں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا پریاس کیا، پرنتو میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اس پرشاسن نے انہوں ان کے لیے کیا کیا۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا،
نیا ڈیفنس آفس کمپلیکس ہماری سیناؤں کے کام کاج کو ادھک سویدھا جنک، ادھک پربھاوی بنانے کے پریاسوں کو اور سشکت کرنے والا ہے۔ ان نئی سویدھاؤں کے لیے ڈیفنس سے جڑے سبھی ساتھیوں کو میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
ادھر دیش کے وبھن چھیتروں میں بھارتیہ پردھان منتری کے جنم دیوس کے اوسر پر انہیں بدھائی دی گئی۔ بھاجپا نے اس حوالے سے کئی سماروہ آیوجت کیے تھے جس میں ان کو بدھائی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ بھارت کا ایسا پردھان منتری ہے جس نے بھارت کو ہر استر پر مضبوط کر دیا ہے۔ اس بھی جموں کشمیر میں استھتی تناؤپورن بنی ہوئی ہے، اور جموں کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ جو پچھلے دنوں کشمیر کے ہاٹ میں استھت سری نگر میں گھٹنا گھٹی جس میں ایک سب انسپکٹر ہتاہت ہوا تھا، اس کے بعد جانچ ایجنسیوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 کے نکٹ الگاوادی چھاپہ مار سکریا ہے جنہیں نیوٹرلائز کیا جائے گا یا انہیں آتم سمرپن کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی شانتی میں بادھا ڈالنے کا پریاس کرے گا اس کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔
لاسٹ ایئر اگست میں ہم لوگ بولے تھے سری نگر میں जीरो टेरिस्ट है, ठीक है ना। फिर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था तो सबसे पहले साकिब मंजूर को एक्टिव किया था, उसके अलावा 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे जिसमें से 5 मारे गए।
सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप ये जान ले कि हमारे साथ आज हमारे नए भैया हैं रविश जैदी। तो आज हम दोनों पत्र संसार कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
अगर आप मुझे इजाजत दें दीदी, तो मैं भी अपने आपके और रेडियो हिंदी के श्रोताओं को सलाम कर लूं। मेरा भी सलाम आप स्वीकार करें। और मैं आपका जाना पहचाना नाम तो जरूर हूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम में हाँ पहली बार दीदी मैं आया हूँ भैया बनकर।
जी, और आज भी हम पत्र और ईमेल और कमेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।
जी जी।
तो सबसे पहले ईमेल शामिल कर रहे हैं जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे का ये ईमेल है। लिखते हैं कि पहले इन्होंने सुविचार लिखा है। सुविचार लिखते हैं, जिंदगी में हमेशा सबकी ज़रूरत रखो पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि ज़रूरत कोई भी पूरी कर सकता है पर किसी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता।
बहुत अच्छे विचार हैं इनके और ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ सही है कि इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन इंसान के पास या इंसान के जीवन में अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई साथी होता है या उसके अब माता पिता ही होते हैं, भाई बहन होते हैं, अगर वो लोग कोई एक कम हो जाता है यानी इस दुनिया से चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता।
जी, इन्होंने लिखा है कि आपके रेडियो तेहरान से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मन लगाकर आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूं और साथ ही प्रतिदिन आपकी वेबसाइट पर भी भ्रमण करता हूं, जहां पर बहुत सी रोचक लाभदायक खबरें और जानकारियां सुनकर मेरा बहुत ही ज्ञानवर्धन होता है। और मुझे 21 अगस्त शुक्रवार का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। पत्र संसार कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों और टिप्पणियों के संतोषजनक जवाब आपके मुख से सुनकर मेरा मन बहुत हर्षित हुआ। आप हमेशा स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
और हमारी भी शुभकामना आपके साथ है कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमारी साइट पर विजिट करते रहें, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और इसी तरह उसकी प्रशंसा करते रहें, उसको सराहते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जी। अगला पत्र है सादिक आजमी का। लिखते हैं कि आपकी ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होने का अवसर पाकर मन प्रसन्न है और बदलते समीकरण पर सीधे संपर्क स्थापित करना अत्यंत सरल हो गया है। सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, खेलकूद, ऐतिहासिक हर पहलू पर समीक्षात्मक रिपोर्ट मिल जाती है, पर इसका लाभ उन श्रोताओं को नहीं मिल पाएगा जो इंटरनेट से दूर हैं या उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये बिंदु बहुत दुखद है। आशा है भविष्य में ऐसी योजना लाएंगे जिससे उन श्रोताओं को भी लाभान्वित किया जा सके।
बिल्कुल सही कहा आपने सादिक आजमी साहब। हमारी ऐसी तमाम योजनाएं रहती हैं और हम हर बार हर नहीं समय इस कोशिश में रहते हैं, इस प्रयास में रहते हैं कि कुछ नया लेके आए जिससे हम अपने श्रोताओं से और ज़्यादा करीब हो सकें, उनके पास उनसे बातें कर सकें, उन तक जो है वो अलग अलग तरह की जानकारियाँ पहुँचा सकें और विशेषकर वे समाचार उन तक पहुँचा सकें जो आज और दूसरे रेडियो या दूसरे जो माध्यम हैं समाचार सुनने और देखने और पढ़ने के, वो उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है। आपने हमारे रेडियो पर आकर उसमें व्हाट्सएप के लिए आपने तारीफ़ की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके भी जो दोस्त हैं और दूसरे जानने वाले हैं, उनसे भी आप ये कह सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो, ताकि हमें और ज़्यादा खुशी प्राप्त हो।
तो भैया, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी एक खबर की। और आज हम जा रहे हैं एक तेहरान में ही, हालांकि एक जंद शासन काल का एक शानदार स्मृति चिन्ह है, और दिबेश हाउस, वहां पे हम लोग जा रहे हैं।
बिल्कुल, साथ में मिलकर चलते हैं और सैर करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।
जी, ये अर्दिबेश हाउस तेहरान में ही है। ये काजारी वंश के नसीरुद्दीन शाह के शासन के दौरान मिर्जा मोहम्मद नजर और उनके परिवार को इसमें रखा गया था। लगभग 20 साल बाद आखिरी निवासियों ने जब इसे छोड़ दिया था, ये इमारत धीरे धीरे गिर गई और खंडर बन गई और बेघरों के लिए आश्रय का स्थान बन गई। ऐसे ही होता है हालांकि, लेकिन लोगों के जोरदार प्रचार के बाद पिछले साल साइट पर मरम्मत का काम शुरू हो गया। मूल्यवान संरचना पर मरम्मत कार्य के दौरान कुदाल के गलत प्रहार से छेद होने के कारण एक कॉरिडोर का पता चला। यहाँ पर जंद शासन काल से संबंधित एक स्नान गृह था और वो मिल गया उन्हें, जिसे पारंपरिक सरोज मोरताज द्वारा बनाए गए टाइलों और चित्रों से अलंकृत किया गया था। 18 महीने के निरंतर काम के बाद अब यह घर एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल गया है, जो तेहरान के औदलाजान के पड़ोस में है, और इसे ईरानी वास्तुकार बहरोज मारबाघी के प्रयासों से नया रूप मिल गया है।
वैसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ इसके लिए कि ईरान में बहुत से ऐसे स्थान हैं, और भी प्राचीन काल के बहुत से ऐसे घर हैं जो वास्तव में देखने लायक हैं और जिसकी सुंदरता के बारे में जितना कहा जाए कम है। तो आप इसी तरह हमारे साथ रहिए, हमारे कार्यक्रम में भी एक कार्यक्रम है ईरान ब्राह्मण, जिसमें आप ईरान के अलग अलग प्राचीन इमारतों और अलग अलग अच्छे स्थानों की सैर करते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए भी और सुनिए भी।
वैसे भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं आप। और अब चलते हैं श्रोताओं की तरफ, दोस्तों की तरफ, और कमेंट्स शामिल करते हैं। फिलिस्तीनियों ने इसराइली जेल में लगाई सेंध, इसराइल में हंगामा, हमास ने पीठ थपथपाई। इस पर हकीम लिखते हैं, वे कैदी नहीं हैं बल्कि बंधक हैं जो भाग निकले हैं। आरटी इन फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहते हैं। खजर हिटलर से लड़ने के लिए रूसी क्या आतंकवादी थे? माशाल्लाह, अच्छा किया, लेकिन ये घृणित है कि इसराइल ऐसी परिस्थितियों में कैदियों को रखता है। संयुक्त राष्ट्र को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये केवल यूके और यूएसए की सेवा करता है, और उन दोनों से जुड़े आतंकवादी राज्यों को कभी भी निंदा, प्रतिबंधों या संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों का सामना नहीं करना पड़ता है।
कुछ बातों से तो मैं दीदी हकीम साहब की जो है वो सहमति, मेरी सहमति है, लेकिन कुछ बातों पर यह है कि जैसे उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को नष्ट कर देना चाहिए, तो किसी भी चीज़ को नष्ट करने करके उसका नतीजा नहीं मिलता है। हर चीज़ को नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि मेरा सुझाव यह है कि हकीम साहब के संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, और उसमें जो तब्दीलियां हैं, जो परिवर्तन हैं दीदी, उसको, उस परिवर्तनों को लाया जाए ताकि इसको और बेहतर किया जा सके। और जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इसलिए कि ये बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके ऊपर बहुत लोगों को यानी इसके ऊपर लोग इस पर इत्मीनान करते हैं, इसके ऊपर उनको ये विश्वास है, तो इसको इस तरह नष्ट कर देने का शब्द इसके लिए प्रयोग करना मेरी समझ से सही नहीं है। इसके अलावा जो फिलिस्तीनी हैं उनके ऊपर ये वास्तविकता है कि आज वर्षों से जो है 70 वर्षों से ज़्यादा से जो अवैध ज़हूनी शासन है उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर तमाशाई बनी बैठी हुई है और चुप्पी साधे हुए है, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।
भैया हमें लगता है कि समय हमारा कम है इसलिए हमने कमेंट एक ही शामिल किया है, तो अब इसके बाद भी हमारे और कुछ ये कार्यक्रम हैं, तो अब हम जा रहे हैं हमारे एक दोस्त के विचार सुनने और ये है पाकिस्तान से मोहम्मद अकील बशीर, तो आइए इनके विचार सुनते हैं।
अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अकील बशीर पाक लिसनर्स क्लब छंग इल्लू पाकिस्तान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे इस सोती पैगाम का असल मकसद तो मुहर्रमुल हराम में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों पर अपना तफसीली तबसरा पेश करना है, लेकिन मैं समझता हूँ इस मौजू पर दीगर तमाम सामईन ने भी अपने सोते पैगाम भेजे होंगे, जिसकी वजह से जो मुझे वक्त मिलेगा वो बहुत मुख्तसर होगा, तो इस मुख्तसर वक्त में तो मैं वो तमाम ख्यालात का इजहार नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए अपना तहरीरी पैगाम जो है वो एक दो दिनों में भेज दूँगा। यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर रेडियो तहरान ने मुस्लिम उम्मा की भरपूर नुमाइंदगी की और ऐसे प्रोग्राम पेश किए जो इमाम अली मकाम की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत उन्होंने हासिल किया होगा। इन प्रोग्रामों में मुस्लिम उम्मा को फ़लसफ़ा शहादत जो समझाया गया मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने, जिसमें अहले सुन्नत और अहले तशी के उलमाए कराम थे, और आज के दौर में इसकी शहादत की अहमियत को जो उजागर किया गया, मैं के तमाम अराकीन का दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुसलमान उम्मत की तरफ से इमाम अली मकाम की बारगाह में ये प्रोग्राम पेश किए। ये बहुत बड़ी काविश है क्योंकि आज के दौर में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम शहादत हुसैन के असल फ़लसफ़ा को समझें। ये एक वाकया नहीं था कि जो हुआ जो गुज़र गया, हुसैनियत और यजीदियत आज भी ज़िंदा है और आज भी जो हमारी मुसलमान उम्मत है उसको इसी दो पहलुओं का सामना है, या तो हम हुसैनियत की तरफ होते हैं और या हम यजीदियत की तरफ जा रहे होते हैं। तो इन प्रोग्रामों में खसूसन इस चीज़ को वाज़े किया गया कि नौजवानों ने किस तरह अपने आप को आका अलैहिस्सलाम के नवासा जिनको शहादत का अजीम मकाम हासिल हुआ, तो किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के उनके पैगाम के मुताबिक गुजारना है। तो मेरे इस मुख्तसर पैगाम को प्रोग्राम में शामिल फरमा कर शर्फ कबूलियत बख्शिएगा। मेरी तरफ़ से एक दफ़ा फिर के तमाम अराकीन का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
जी, ये मोहम्मद अकील साहब ने जो कहा है, जो बातें की हैं, बहुत सही बातें भी हैं, और उसमें एक चीज़ बता दें कि हमने अपने कार्यक्रम के आरंभ में इस बात कही थी कि बहुत से ऐसे समाचार, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम रेडियो चैनल्स और अखबार टीवी ये सब बहुत कम बात करते हैं। इसमें से एक जो विषय है वो मुहर्रम का भी विषय है। मुहर्रम का विषय बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये ऐसा विषय है जो आज के विषयों में से, यानी जो विषय है आतंकवाद का, दीदी ये उसी में से एक बहुत ही अहम विषय है, इसलिए कि मुहर्रम जो है वो आतंकवाद और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन का नाम है जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब समय बहुत कम रह गया है और बातें बहुत हैं, तो इसलिए हमें अपना प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। तो श्रोताओं, आपसे अगले बार मुलाकात होगी, अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, اس وقت ہمارے پاس اب کم سمے کم ہے, تو اپنی دیدی مریم اور اپنے بھیا رویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم. وگیان کی ڈگر.
دوستو, کاریکرم وگیان کی ڈگر کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں. آج کے کاریکرم میں ہم دنیا میں ہونے والے ویگیانک پرگتی اور ایرانی ویگیانکوں اور شودھ کرتاؤں کے پریاسوں پر روشنی ڈالیں گے. مریم مہر دادی اور اختر عباس کا سلام سویکار کیجیے.
دوستوں, ایران کے رویان شودھ کیندر کے ویگیانک کارنیا یا کارنیل اسٹیم سیل کو وکسیت کرنے والے ایک آئی ڈراپ کو بنانے میں سفل رہے ہیں. کارنیا آنکھوں کے باہری حصے میں ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوتا ہے. اسے آپ آنکھوں کے لیے کسی کھڑکی کی طرح سمجھ سکتے ہیں. کئی بار کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے یا اس پر دھند جم جاتی ہے. آنکھیں ہمارے لیے سب سے مہتوپورن انگوں میں سے ایک ہیں, اس لیے اس کا خراب ہونا کئی بار بھیانک ہو جاتا ہے. آنکھوں کی کئی سمسیاؤں میں سے ایک کارنیا خراب ہونے کی سمسیا ہے.
کارنیا آنکھوں کے باہری حصے میں ایک ٹرانسپرنٹ لیئر ہوتا ہے. اسے آپ آنکھوں کے لیے کسی کھڑکی کی طرح سمجھ سکتے ہیں. کئی بار کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یا اس پر دھند جم جاتی ہے. کئی بار اس کی وجہ سے مریض درشٹی ہین بھی ہو سکتا ہے. کارنیا کئی بار سیلز کو خود ری جنریٹ کر لیتا ہے, لیکن اگر سیلز کی ایک کمی ختم ہو گئی ہے تو اس کا اپنے آپ ٹھیک ہونا سمبھو نہیں ہے.
ایسے میں ٹرانس پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن مریضوں کی سنکھیا ڈونر کی سنکھیا سے کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے میں ٹرانس پلانٹ میں بھی خاصا مشکل ہوتی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاپان میں ریسرچ کی ٹیم نے اسٹیم سیلز پر ریسرچ کیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جس مہیلا کو اسٹیم سیل سے بنایا گیا کارنیا ٹرانس پلانٹ کیا گیا, اب وہ سامان ہے, لیکن اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے.
वैज्ञानिकों का कहना है कि वे इसकी सुरक्षा और कुशलता को लेकर सुनिश्चित होना चाहते हैं. बता दें कि स्टेम सेल्स को इम्यून रिजेक्शन का खतरा कम होता है. किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यह सबसे बड़ा खतरा होता है. आपको ये बताते हुए खुशी हो रही कि ईरानी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने कार्नियल स्टेम सेल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक आई ड्रॉप बनाया है जो कार्निया के ट्रांसप्लांट की समस्या से मुक्ति दिलाता है और कार्निया के स्टेम सेल की मरम्मत कर देता है.
लिम्बल स्टेम सेल को कार्नियल स्टेम के रूप में भी जाना जाता है. कार्नियल लिम्बस मूल कोशिका बेसल उपकला परत में स्थित है. वे कार्निया और اسکیلیرا کے بیچ کی سیما بناتے ہیں۔ لمبل اسٹم سیل کی وشیشتاؤں میں سے ایک دھیمی ٹرن اوور در، اچھ پرسار شمتا، کلونوجینیسٹی اسٹم سیل مارکروں کی ابھیویکتی، ساتھ ہی پورے کارنیل ایپیتھیلیم کو پناہ اتپن کرنے کی شمتا شامل ہے۔ لمبل اسٹم سیل پرسار کو بنائے رکھنے کی بھومکا ہے۔
اس پریوجنا کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ لمبل اسٹم سیل کے ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی مریض کی آنکھوں میں کچھ سمسیائیں ہوتی ہیں، جن کو دور کرنے کے لیے اس آئی ڈراپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے 2 ہفتے بعد تک اپکلا کوشکاؤں میں سمسیائیں رہتی ہیں، اور اس ڈراپ کو استعمال کر کے اس سمسیا کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ٹرانسپلانٹ کے 2 سے 3 ہفتے کے بیچ اس کی یہ سمسیا دور ہو سکتی ہے۔
یہ شودھ ریان شودھ کیندر تہران کے شہید بہشتی میڈیکل کالج، شیراز میڈیکل کالج تتھا امریکہ کے ایلی وینزا وشودیالے کے سہیوگ سے پریلام تک پہنچا، اور اس شودھ کو رویان شودھ کیندر نے بازار میں اتار بھی دیا اور لوگ اس سے لابھ اٹھا رہے ہیں۔
دوستو، عامر کبیر ٹیکنیکل کالج کے شودھکرتا شدھ ایندھن بیسڈ شدھ ہائیڈروجن کا اتپادن کرنے میں سفل رہے ہیں، جسے تیل، گیس، پیٹروکیمیکل اور اسپات ادیوگ میں پریوگ ہو سکتا ہے۔ اس یوجنا پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پریوجنا پریاورن کے پردوشن کو کم کرنے تتھا ورتمان شیلیوں کی تلنا میں ارجا کے پریوگ کو کم کرنے کے لیے مائکرو ری ایکٹر میں ہائیڈروجن اور سنسلیشن گیس کا اتپادن کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کٹھن گنت کی شیلی کا پریوگ ہوتا ہے۔ دوسری اور اس شودھ کاریہ کے لیے نوین کیمیکل چکر شیلی کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ اس پریوجنا کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس پریوجنا کا کوئی گھریلو یا ودیشی نسخہ نہیں ہے، اور جو نسخہ پیش کیا گیا ہے اس کی سمیکشا انتراشٹریہ ججوں نے کی، اور اس کے بعد وہ پرکاشت ہوا۔
پریاورن کا پردوشن کم کرنا، ارجا کے پریوگ کو کم کرنا اور کم سے کم ری ایکٹر کا پریوگ اس پریوجنا کی وشیشتاؤں میں ہے۔ اسی طرح میتھنول، امینیا اور پراکرتک گیس دوارا پیٹرول کا اتپادن اور اسپات ادیوگ میں لوہ آئسک بنانا، ہائیڈروجن اور سنسلیشن گیس کے اتپادن میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
مینتھول اچھ شکتی کے کوئلے، کرشی اوشیشوں، تاپ ودیوت سنیتروں کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پراکرتک گیس سے بننے والا الپ کاربن یوکت اور ہائیڈروجن واہک ایندھن ہے۔ مینتھول پیٹرول اور ڈیزل کی تلنا میں تھوڑی کم ارجا دیتا ہے، کنتو یہ پریوہن شیتر ارتھات سڑک، ریل اور سمندری ارجا شیتر ارتھات ڈی جی سیٹ، بوائلر، پرکریا ہیٹنگ ماڈل، ٹریکٹر اور وانجک واہن شامل ہیں، اور رسوئی گیس میں ایل پی جی ارتھات آنشک روپ سے کیروسین میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں، اور لکڑی کے کوئلے کو پرستاپت کر سکتا ہے۔
امونیا گیس ہے جو راسائنک اتپادوں اور ارورکوں پہ پائی جاتی ہے۔ مانو شریر میں بھی امونیا پایا جاتا ہے، لیکن اس کا استر نمن ہوتا ہے۔ وشو سواستھ سنگٹھن ڈبلو ایچ او کی مانے تو امونیا اور امونیم لغوڑ کا اپیوگ گھٹکوں کو صاف کرنے اور کھادیہ یوجک کے روپ میں کیا جاتا ہے، جبکہ امونیم کلورائڈ کا اپیوگ موتر وردھک ارتھات موتر وردھک اوشدھی کے روپ میں کیا جاتا ہے۔
وشیشوں کی مانے تو شدھ اور صاف پانی میں امونیا نہیں پایا جاتا ہے۔ پانی میں امونیا ہونے کے کارن ہیں ان میں جیواشم ایندھن جلانا، ڈائی یونٹ، ڈسٹلری اور انیہ فیکٹریاں سیویج پرمکھ ہیں۔ امونیا کا اپیوگ ایک اودیوگک رسائن کے روپ میں کیا جاتا ہے، یہ اودیوگک اپششٹوں سے ہو کر زمین یا جل سروتوں کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔
دوستوں، ایک ایرانی وشیشگیہ آماشے کے بیکٹیریا پر نظر رکھنے والے ایک سینسر کو وکست کرنے میں سفل رہا ہے۔ پریوگ کے دوران اسے پتا چلا کہ انسان کے شریر کا یہ حصہ ایک انترم سرکشا پرنالی کے روپ میں کام کرتا ہے۔ اس وشیشگ نے آسٹریلیا میں आर एम आई टी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की मदद से छोटे सेंसर का पहला परीक्षण किया और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद आमाशय में मौजूद गैसों का जायजा लिया और उसकी समीक्षा की।
ये परीक्षण इस बात का चिन्ह है कि संभवतः इंसान का आमाशय भी अपना एक सुरक्षा सिस्टम रखता है जो विदेशी हमलावरों से संघर्ष करता है। आमाशय के अंदर मौजूद छोटा यंत्र जानकारी को तुरंत मरीज के मोबाइल पर भेजता है और शोधकर्ता वास्तविक रूप से खाना हजम करने की प्रक्रिया पर नजर रखता है। बताया जाता है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को आमाशय में विघ्न या समस्या पैदा होने का सामना होता है और नवीन शैली का प्रयोग करके इस समस्या को दूर करने में मदद हासिल की जा सकती है।
आमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। ये चबाने के बाद पाचन के दूसरे चरणों में शामिल होता है। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। ये छोटी आंतों में आंशिक रूप से पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है।
हाल ही में शोधकर्ताओं ने आमाशय को इंसान का दूसरा मस्तिष्क करार दिया है और शोध कार्यों से पता चलता है कि बदन का यह हिस्सा एक अंतरिम सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करता है। इस सेंसर के आविष्कारक डॉक्टर कुरुश कलांतरजादे का कहना है कि इस आविष्कार से पहले आमाशय की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्टूल टेस्ट कराया जाता है और आमाशय में मौजूद टेस्ट और ऑपरेशन द्वारा ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन नए आविष्कार द्वारा इस चीज को वास्तविक रूप से पहचाना जा सकता है और ये कैप्सूल गैर हमलावर तरीके से आमाशय के माइक्रोब पर नजर रखता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रमों के बारे में आप हमें अवश्य बताया कीजिए। अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना, विज्ञान की डगर। हमारे कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.ir/hi। इसी के साथ हमारी सभा संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.